मैंने तो इसलिए कहा था, ये तुम क्रोधित होकर के हमें दो चार कड़ी बातें सुना देगी, मैं उन बातों को सुनने के लिए ललायित होकर के मैंने ये किया। मैं क्या जानता था कि तू इतनी कोमल हृदय की है, ये तुम परिहास नहीं समझ सकेगी और तुम उल्टे मूर्छित होकर के मर जाएगी। मैं तो वृंदावन में गोपियों के साथ में कैसी कैसे कैसे परिहास हमने किए और उल्टे उन लोगों ने हमें न जाने क्या क्या कहा, धूर्त, चोर, चोट्टा, लंपट, शिरोमणि और हमको यहां तक कि सुबल को कहा, देखो वो स्त्री वेश बना करके आ रहा है, श्याम आ रहा है, उसको वहीं पर रोक देना, खबरदार हमारे कुंज में न प्रवेश करे, बाहर से बाहर निकाल देना। और उनकी सखियां सब रूप मंजर इत्यादि कृष्ण को गारे, धूर्त हमारी आज सखी ने आदेश दिया तुमको यहां से निकाल बाहर करने का, खबरदार तुम वहां पर नहीं जा सकते, यहीं पर रुक जाओ और यहीं से लौट जाओ। तो वो परिहास के बदले और हमसे परिहास करती थी। मुझे तो इसी की बात की इच्छा थी कि आज तुम मुझे दो एक गालियां देगी और बड़े प्रेम के साथ में उसको मैं श्रवण करूंगा। एक समान भाव अच्छा नहीं लगता, सब समय परमानंद अच्छा नहीं लगता, उसके साथ में बीच बीच में चटनी, अचार और चीजें हो तो अच्छी लगती है। तो तुम तो देखते हैं कि मर ही गई। मैं नहीं समझता था कि इतने कोमल और ऐसे हृदय की है तुम। रुई ले लिया और देखने लगे जब मर गई कि बच गई, देखा जे थोड़ा थोड़ा श्वास चल रहा है, बोले जे प्रिय, मैंने खूब जोर से कान में कहा, मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा जो तुम्हें प्रत्याग करेंगे, मैंने परिहास किया था, मैं सच सच प्रतिज्ञा करके, मैं शपथ करके ऐसा कर रहा हूं, तुम जल्दी से उठो नहीं तो तू मरेगी तो हम भी मरेंगे। थोड़ी देर के बाद में उनको कुछ थोड़े 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 होश आया, होश आ करने के बाद में मुंह को आंख धुला करके कृष्ण ने बैठाया। अब उसके बाद में वो करिए, सचमुच में यही बात है, आपने जैसा कहा था वही बात है। आप निर्गुण हैं, आपके ऊपर में काली कमरिया के ऊपर में दूसरा रंग नहीं चढ़ता, जितने जगत में रंग हैं उस पर काली तो चढ़ जाएगा काला रंग, किंतु काले रंग के ऊपर में कुछ नहीं चढ़ता, इसलिए आप सचमुच में निर्गुण हैं। जितने गुण वाले हैं आपको नहीं पा सकते और मैं गुण वाली हूं, संसारिक लोग हमें चाहते हैं किंतु मैं उनको किसी को नहीं चाहता, मैं तो निर्गुण को ही चाहती हूं। यदि आप ऐसा कहेंगे तो मैं तो जीवन धारण नहीं कर सकती, इसके बाद में लंबी कथा हो जाएगी, इसलिए संक्षेप में बतलाया। इसको कहते हैं प्रणय कलह, प्रेम कलह, ऐसे ऐसे कलह हो रहे हैं। और उधर में वृंदावन में क्या हो रहा है, यहाँ तो रोज रोज आनंद उत्सव हो रहा है, गोपियों की तरफ में चिंता तो कीजिए, गोपियां बावरी हो रही हैं, रोते रोते आंख से मानो अंधी होनी चाहिए। यशोदा मैया की क्या दशा है? यशोदा मैया उसी समय में वो बूढ़ी हो गई, लकड़ी लेकर के चलने लगी, डोकरिया सी हो गई कृष्ण के विरह में। एक दिन दोपहर में उठी और उठ करके कृष्ण की छोटी सी बांसुरिया, उनके खिलौने, उनका मोर मुकुट सब एकत्र किया और बांध दिया गठरी में और कहीं जाने की तैयारी हो रही थी। यशोदा जी की सहेलियों ने, सखियों ने पूछा, अरे मैया तू कहाँ जाए? उन्होंने कहा, मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरा लाला है। कहां तू बड़ा लाला यहां है थोड़े, वो तो बहुत दूर है, तो मैं वहीं जाऊंगी। मैं देवकी रानी की जाकर आराधना करूंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी, ये देवी तू ही उसकी मैया है, मैं नहीं मैया हूं। मुझे तो अपने घर में नौकर रख लो, तुम्हारे घर में बर्तन माजूंगी, झाड़ू देंगी और तुम्हारे लाला का केवल दर्शन पाकर के मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। ये कल्पना कर रही है। सखियों ने उनको रोका, अरे दोपहर में तू कहां जाएगी अभी? अरे तेरा लाला तो द्वारका में बैठा है, तू यहीं पर रह। और ये उनको रोका तो बस झट वहीं पर मूर्छित हो गई। राधिका जी की क्या अवस्था होगी? राधिका जी तो एकदम बावरी होकर के अपनी सहेलियों के साथ में कभी गोवर्धन जाती है, कभी नंदगांव जाती है, कहीं काम्य बन जाती है, कहीं गोकुल में जाती है। पूछती क्या है, मेरी श्याम कहाँ है? कोई तो बताओ जी मेरे श्याम कहाँ है? ढूंढ रही है और कहीं श्याम में, श्याम थोड़े ही यहाँ है। तो एकदम ढूंढते ढूंढते बावरी हो गई है। जरा देखो तो कृष्णदास, राधा जी के श्याम किधर हैं? जरा ढूंढ करके पता लगाओ तो, जल्दी से बोलो। तो दशा यहां हो रही है। खबरदार कृष्ण से ये मत कहना गोपियों की बात, मैं तो बड़े विघ्न हो जाएंगे, मथुरा की लीला हो ही नहीं सके। इसलिए यहां से चुपचाप रहें और इधर में द्वारका में पहुंचे, देखे ये कृष्ण क्या कर रहे हैं। अब वहां की इसके बाद में जो लीला है आप लोग उसका श्रवण करें। शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणाय। यं प्रव्रजन्तमनुते तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति। कवैवास्मि कवैवास्मि न जीवामि त्वया विना श्रीज्ञे राधे तं मे मां। सवेरे की लीला ब्रज के बलदेव जी के ब्रज आगमन और गोपियों को और गोपों को सांत्वना देने तक के लिए हुई, जिसमें बलदेव जी द्वारका में कृष्ण से बोले, सचमुच में आप बड़े निष्ठुर हैं, आपके जैसा जगत में कोई निष्ठुर नहीं है, न जाने क्यों जगत के लोग कहते हैं आप, आपके लिए बड़े कोमल हृदय के हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े ऐसे, किंतु सचमुच में आप बड़े ही निष्ठुर हैं। एक दिन हम लोग यदि कहें तो मेरे साथ में आप चलें और दोनों भाई हम लोग नंद बाबा, मैया यशोदा, सखा सुबल इत्यादि के साथ में हम लोग भेंट करके ना हो तो चले आएंगे, अंततः उनको सांत्वना देना कर्तव्य है। आप जानते नहीं हैं किस श्रीदाम जी प्रतिज्ञा करके बैठा है भांडीर वन के पास ही, मैं कभी भी ब्रज में नहीं लौटूंगा जब तक कि कृष्ण नहीं आएंगे, प्रतिज्ञा करके गए हैं जे कल नहीं तो परसों जरूर आऊंगा, तो मैं यहीं पर बैठ रहा हूं, अन्न जल त्याग करता हूं, जब कृष्ण यहां आएंगे तो उनको लेकर के हम ब्रज में लौटेंगे, ऐसे नहीं लोग। तो सीदामा भी वहां पर बैठा हुआ है, जो यशोदा मैया की तो आप बात जानते हैं, नंद बाबा की बात, इसलिए एक बार हम लोगों को चलना जरूरी है। क्या वजह कि आप नहीं जाते, किंतु कृष्ण के हृदय में जो बातें हैं वो किसी से कम नहीं कर, कहने की बात नहीं है, किसी से भी नहीं कह सकते। यदि मैंने वो कल आज सवेरे ही 5-7 प्रश्न हमने उठाए थे, जो ब्रज से क्यों आए, तो क्यों का उत्तर मैंने दिया। अच्छा, यदि आप यदि मथुरा से वृंदावन से मथुरा से वृंदावन नहीं आते तो कभी कभी तो जाइए, कृष्ण इसका उत्तर भी नहीं दे पाते, किंतु मन में ये सोचते हैं मरुभूमि में या आग पर कोई तवा चढ़ा दिया जाए या आग है उसमें एक बूंद घी ऐसे यदि कर दिया जाए तो आग उसे निभ जाएगी, बुझ जाएगी कि और वो बढ़ जाएगी। यदि खूब पिपासा जितने प्यास है व्यक्ति है उसको एक बूंद जल दे दो, प्यास और बढ़ जाए। भूखे को थोड़ा सा इतना दे दो और भूख बढ़ जाए। इसलिए भाई एक दिन जाकर के लौटाऊं तो गोपियों का विरह और बढ़ जाएगा, उससे बल्कि न जाना ही अच्छा। इसी तरह से समझिए, कृष्ण ने किसी को एक पुत्र नहीं होता था, बहुत दिनों तक बहुत प्रार्थना करने पर चित्रकेतु महाराज जी को एक पुत्र दे दी। मांगे कि जैसे वो थोड़े दिन के बाद ही वो मर गया, खूब सुशील सुंदर और था, तो वो कहते हैं कि प्रभु आपने क्यों पुत्र दिया, उसे तो अपुत्र कहता तो वो अच्छा था, आपने ये दुख और हमारा बढ़ा दिया। ऐसे ही ब्रज के लोग विरह में बड़े आतुर, उनको सांत्वना देने के लिए एक दिन से नहीं होगा, इसलिए एक दिन में जाकर के मैं क्या करूंगा, उसे बल्कि ना जाना ही अच्छा, इसलिए नहीं जा सकते। दूसरी बात, जाए कैसे, कर्तव्य जो ले लिया, अस्ति नास्ति की अस्ति और प्राप्ति प्राप्ति दो उनकी कन्याएं जरासंध की, उसने एक बार मथुरा में आक्रमण किया, आक्रमण करने पर देखा जैसे कंस कैसा बलवान है, जरा देखूं तो सुनते हैं कि राजकुमार ये कंस बहुत बलवान है, उसे अपनी लड़की की शादी करेंगे तो उसकी वीरता देख करके करेंगे। उसने बड़े बड़े मतवाले हाथी दो चार उन्होंने मथुरा में छुड़वा दिया, और वो हाथी मदमत्त थे, लोगों के घर उजाड़ने लगे, लोगों को मारने लगे, और कोई ऐसा वीर नहीं जो उनको ठीक कर सके। कंस ने उनके पिछले दोनों पैरों को पकड़ करके दोनों को हाथियों को और घुमा करके उन्हीं के सेना पर, यहां से उनका उनका दल था वहां गोकुल में, गोकुल के पास बस यहां से फेंक दिया, और वहां पर बहुत से लोग हजारों आदमी मर गए। देखा जी ये तो बड़ा बलवान है, तब उसे शादी की। कंस के मारे जाने पर उनकी लड़कियां पहुंची उसके पास में, और तरह तरह की बातें, जैसे देखो आपके जमाई बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, वो तो केवल सिंहासन पर ऊपर बैठे थे, और इसके मन में पाप था कृष्ण के और बलदेव के, वो तो इनको अपना भगना भगनीय समझते थे, और ये झप लपक करके और उनका केश आकर्षण करके पृथ्वी में गिरा दिया। वो चाहते तो तभी उठ करके मार सकते थे, उन्होंने सोचा कि अपने में इस भगने पर कैसे हाथ उठाऊं, इसलिए हाथ उठाए नहीं और उनको वो मारा। वो आक्रमण कर रहा है, एक बार नहीं आपने सुना ये 18 बार उसने आक्रमण किया था। तो उस समय कृष्ण सोचते हैं जैसे वो तो आएगा और आक्रमण करेगा, उसमें मथुरापुरी को और ब्रज को मटिया मीट कर देगा, इसलिए मैं यदि जाऊं उनको छोड़ करके तो ये सब मरेंगे, और यदि मैं वृंदावन में जाऊं ब्रज में तो वहां पर कोई किला नहीं, कोई सेनाएं नहीं है, वहां पर तो गईये चराने वाले ब्रजवासी हैं, वो लोग लड़ना क्या जाने, वो तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। यदि ये समझ लिया कि इनके माता पिता नंद और यशोदा हैं, तो सबको मारेगा, सबको बड़ा तंग करेगा, इसलिए उनको जानने नहीं, इसलिए वो सोचते हैं कि अभी मथुरा में ही रहें, और जब ये सब मारे जाएंगे, जब मारे जाएंगे इनका आक्रमण समाप्त हो जाएगा, जो बचे खुचे हैं काम समाप्त होने के बाद में तब मथुरा जाऊंगा। असल में ये सब ऊपरी बात है, वो जाना नहीं चाहते। बलदेव जी बीच बीच में कहते हैं, रोहिणी मैया भी कहती हैं, उन लोगों ने प्रस्ताव दिया, अच्छे गोकुल वासियों को यहीं पर ले आया जाए, किंतु यह संभव नहीं। क्यों नहीं? गुलाब का फूल होता है ना, अपने वृंत में रहने पर ही वो फलता फूलता, बहुत वृंत माने होता है डंडी, पौधे के डंडी के साथ में लगा हुआ रहेगा तो वो प्रस्फुटित रहता, उसमें सुगंध इत्यादि रहती। और यदि अब उसके वृंत से काट करके अलग कर दिया जाए तो धीरे 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 कुमलाते धीरे धीरे कुमला जाए, समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रेम भूमि है ब्रज, और उनका वृंत है ये ब्रज। यदि वो गुलाब फूल अर्थात तो ब्रजवासी लोगों को यदि मथुरा में या द्वारका में ऐश्वर्य भूमि में लाया जाए तो वो नष्ट हो जाएगा, कुमला जाएगा। इसलिए यह संभव नहीं कि उनको लाया जाए या मथुरापुरी को छोड़कर के वहां इन सब को लेकर के जाए, भी संभव पर नहीं है। यह प्रेममयी रसमयी भूमि है, वह ऐश्वर्य की भूमि है, इसलिए ये भी संभव पर नहीं। विचार करके सोच रहे हैं कि क्या करूं। अंत में बलदेव जी इनके पास में आए, बोले भैया तू बड़ा मिठू है, तू चलता क्यों नहीं है? और यदि तू नहीं चलता है तो मैं अकेले जाता हूं, एक बार जाकर के उनको सांत्वना दिया। कृष्ण रोने लग गए, सचमुच में बड़ा निष्ठुर, मेरे जैसा अकृतज्ञ और कोई नहीं है, मैं वहां पर जा नहीं सकता। एक कलम और तलाक मांगी और पत्र लिखने लगे गोपियों के यहां, नंद बाबा के। बलदेव जी, पत्र लिखने से काम चलेगा? उद्धव के जाने से कुछ नहीं हुआ, हमारे जाने से भी कुछ नहीं होगा, वो पत्र भी काम नहीं करेगी। जब तक आप वहां पर खुद नहीं जाएंगे, तुम नहीं जाएगा, तब तक ये काम नहीं होगा। इसलिए आप मेरे साथ में चलिए, पत्र लिखने से नहीं। जब कृष्ण रोने लगे, रो करके मूर्छित होने लगे, तो ये बहाना बना रहा है। वो चादर ओढ़ करके सो गए रोते रोते, लगे ये जाएगा नहीं और हमको जाने के लिए भी नहीं कहता, मैं जाऊ जाऊंगा, ऐसा सोच करके वो रोहिणी मैया के यहां गए। रोहिणी मैया को प्रणाम किया, बोले वो तो जाता नहीं है तो मैं जाऊं घुमाऊं। जो सचमुच तुम ठीक कहते हो, वो बड़ा भारी निष्ठुर है, वो जाएगा नहीं, टाल बहाना करेगा, इसलिए तुम जाओ, माता पिता को, ब्रजवासियों को, सबको सांत्वना दे करके तुम आओ। बलदेव जी मैया को प्रणाम किया, उनका आदेश लेकर के ब्रज में आए। इसकी कथा आप लोग सुनते हैं, कैसे रास किया, गोपियों को सांत्वना दिया, गोपों को सांत्वना दिया। किंतु एक बात हो गई निराली, ये बलदेव प्रभु जी हैं गोरे, किंतु ब्रज में आकर के सांवले बन गए, इसलिए काले दाऊ जी भी हैं, गोरे दाऊ जी भी हैं। जब वो यहां पर गोप गोपियों के साथ में रहते हैं तब तो गोरे दाऊ जी हैं, और जब मधुबन इत्यादि है, मधुबन है और भांडी माठ बन है और कई जगहों में हमने देखा है, वो काले दाऊ जी। तो गोरे दाऊ जी काले दाऊ जी कैसे हो गए? कहते हैं कि वो मदिरा पीते हैं, मद्यपान करते हैं दाऊ जी को, तो वो मद्यपान करते हैं, कृष्ण की रूप प्रेम का मधु पीते हैं, कृष्ण की सब समय चिंतन करते हैं। ये मद बोतल वाला मद नहीं, बोतल वाला मद, वो मधु प्रेम सब समय कृष्ण की लीला का चिंतन करते हैं और कृष्ण का ही नाम करते हैं, कृष्ण का ही चिंतन करते करते वो रह गया द्वारका में और मैं चला आया यहाँ। इसलिए उस विरह को न सह सकने के कारण उनकी चिंता करते 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 दाऊ जी गोरे से ऐसा होता है। जैसे कृष्णचंद्र भी कभी राधा जी को छोड़ दिया, राष्ट्रस्थल में अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान हो करके राधा जी को भी कहा जी हमारे कंधे पर बैठ लो, और जब वो बैठने के लिए तैयार हैं तो राजा ने कहा खिसक गए। अब तो वो हा नाथ हा रमण क्वासी क्वासी महाभुज इत्यादि करने लग गई। आप कहाँ हैं, हमको छोड़ करके चले गए, इस प्रकार से चिंता करते ही वो तो रोने लगी, धर धर घूमने लगी। और कृष्ण चंद्र स्वयं छिप करके इमली तला वृंदावन में है जमुना के किनारे, वहां पर इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए और राधा चिंता निवेशन जस्य कांतिर विलोपिता। कृष्ण जी राधा जी की चिंता करते 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 रूप तो वही रहा कृष्ण का स्वरूप, किंतु हो गए सांवले से बुरे बन गए राधा जी का चिंतन करते 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 करते। ऐसे जो कृष्ण का जो स्वरूप है हम लोग उनका प्रणाम करते हैं, ऐसा हो जाता है। गिरगिट को देखा है ना, कभी सांवला कभी काला कभी पीला, कभी ऐसे करता है कभी ऐसे करता है। तो इस तरह से प्रेम ऐसा है कि उसको रंग से दूसरा रंग बना देता है, इसलिए दाऊ जी गोरे बन गए। यहाँ पर कुछ दिन रहे, सांत्वना दिया, फिर ब्रज में वो लौटे और कृष्ण से जल्दी से आने का अनुरोध किया। इस प्रकार से बलदेव जी की लीलाएं होती हैं। कोई कोई कहते हैं कि बलदेव जी का रास किसके साथ में हुआ, जिन गोपियों के साथ में कृष्ण ने रास किया था उनके साथ में नहीं, ऐसा कभी कदापि मत सोचना, नहीं तो रास रसाभास हो जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। कृष्ण की प्रियाएं अलग हैं, बलदेव जी की भी प्रियाएं अलग, बलदेव जी भी भगवान स्वयं ही है, वो कृष्ण और वो दोनों अलग अलग नहीं है, क्यों दो रूपों में जगत का कल्याण करने के लिए हुआ है। दोनों का रूप एक समान है, वो गौर है वो काले, वो हल मौसम धारण करते हैं और वो बंसी धारण करते हैं, बस इतना ही उनमें कोई अंतर, इसलिए वो भी रास करते हैं। भाई एक आदमी जाकर के बंद करो, वो रास करते हैं। कैसे रास करते हैं, उनकी गोपियां अलग हैं और कृष्ण की अलग हैं, अलग अलग दो रास करते हैं। अब प्रश्न होगा, जमुना तो कृष्ण की प्रिया है और कालिंदी रूप में कृष्ण की पाठरानी है, तो जमुना जी को हल से क्यों खींचा, उसमें भी बहुत रहस्य है। जिस जमुना को खींचा था वो सागर की पत्नी है, समुद्र पत्नी है, और कृष्ण की प्रिया जो जमुना जी है वो अलग है। जो ब्रज में रहती हैं, ब्रज को चारों तरफ से घेर करके वो तो जमुना जी हैं, उन्हीं का नाम विशाखा, विशाखा ही जमुना जी बनी है, वही कालिंदी है, कृष्ण से उनकी शादी हुई है। और जो सागर के तरफ में जलने वाली सागर की जो पत्नी है वो जमुना जी अलग है, उनको खींचा था, उनको कहा था कि इधर आओ, गोपियां पानी पिएंगी और हम लोग उसमें स्नान करेंगे, तो जब नहीं आई तो अपना प्रभाव देकर दिखाने के लिए आजकल शेरगढ़ के पास में
राम घाट
के पास में वो उल्टा जहाँ पर बहती है
उजानी
वही पर उन्होंने हल से ऐसा खींचा, उधर में उधर से वैसे जा रही थी और खींच करके एकदम एक दो माइल तक ऊपर में लेकर के चले गए, इसलिए जमुना ऐसे बहती हुई फिर इधर से जा रही। अभी उसका चिन्ह है, तो वो जमुना जी सागर पत्नी है और ये विशाखा जी हैं, ये वृंदावन वाली, और वहां वाली हैं कालिंदी। एक स्वरूप होने पर भी मूल हैं ये विशाखा जी, जमुना जी, और उनके अंश हैं द्वारका वाली कालिंदी, और उनका अंश है समुद्र की पत्नी जो समुद्र में जाकर के मिलती है। इन सब तथ्यों को नहीं जानने से ऐसा कुछ गड़बड़ी हो जाए, इसलिए इन सब तत्वों का तथ्य जान करके तब हम लोगों को कुछ समझना चाहिए। तो बलदेव जी वहां से लौट करके आए और कृष्ण से ब्रज की स्थिति का वर्णन किया। कृष्ण और मुग्ध हो गए, रोने इत्यादि, ये सब का वर्णन हम लोगों ने किया। अब आगे महाराज मृग की कथा है, सांब और किसका, सांब और दुर्योधन की लड़की
लक्ष्मणा
की शादी की आएगी, अनिरुद्ध और उषा की शादी की बात सब आएगी, उसमें बड़े सुंदर सुंदर उपदेश आएंगे। हम उन उपदेशों का जब जब होगा तब विश्लेषण करेंगे, उन उपदेशों से हम आप लोग कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में आचरण करेंगे। अब जहाँ से कथा शेष हुई थी वहीं से अब कथा पुनः आरंभ हुई है, आप लोग उसको श्रवण करें। और एक बात, पहले हम लोगों ने सोचा था जे कल शाम को कथा समाप्त होगी, किंतु 8 दिन ही रहेगी, 9 दिन पूरा नहीं होगा, इसलिए कल समाप्त नहीं होगी। परसों 9 दिन पूरा होगा, परसों सवेरे सभी लोग आप लोग आएंगे, उस दिन हम लोग जो कथा बाकी रहेगी दशम एकादश की वो कथा और श्रीमद् भागवत श्रवण का महात्म्य इत्यादि हम लोग वर्णन करें, इसके संबंध में और जो शिक्षा करने की बातें उसका भी हम लोग वर्णन करेंगे, और फिर कीर्तन इत्यादि के बाद में जहाँ से भागवत आया था वहाँ पर जाएगा, और हवन इत्यादि का कार्य कैसा होगा मैं फिर कल इसके संबंध में आप लोगों को बतलाऊंगा, किंतु कल समाप्त नहीं होगा, परसों सवेरे हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे प्रतिदिन 7 बजे आप लोग आते हैं, परसों भी आप लोग सब आएंगे और शाम को द्वारका की लीलाओं का वर्णन किया, उसमें कुछ सामान्य शिक्षाएं हैं हम लोग का वर्णन, उसका क्या रहस्य है। आप लोगों ने महाराज मृग का नित्य कथा सुनी, मृग ने मृग इच्छाकु के पुत्र थे, उन्होंने सोने से सिंह मड़ी हुई और चांदी से खूर मड़े हुए, रत्नों से सजी हुई बड़ी दूध देने वाली सुंदर सुंदर बछड़ों से जुग इतने गायों का दान किया, आकाश के तारों को गिनना भले ही सहज है, ओस की बूंदों को भी गिनना सहज हो सकता है, पृथ्वी के धूलिकण को भी गिन सकते हैं, किंतु कि उन्होंने इतनी गायों का दान किया था इसका कोई भी लोखा लेखा जोखा या संख्या नहीं कर सकता। फिर इनको गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा क्यों? जो लोग अस्पताल बनाते हैं, शिक्षा मंदिर करते हैं, लोगों कार्य के लिए कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कभी कभी इनकी बड़ी दुर्गति भी हो जाती है। भगवान को पाने के लिए ये शुद्ध उपाय नहीं है। इन्होंने जो गाय दान दी, उन गाय के दानों में से एक गाय लौट करके किसी प्रकार से इनके पास में आ गई, जो गाय दान देने के लिए प्रस्तुत की गई थी। पहले उन्होंने दान किया, वो गाय एक ब्राह्मण की यहां से लौट करके और उन गायों की श्रेणी में मिल गई जो कि अभी दान करना था। वो ब्राह्मण आया जिसकी गाय थी और जिस ब्राह्मण ने भी दान लिया है, दोनों में बाघ युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगी। ये गाय मेरी है, वो कहते कि मेरी है, वो कहते तेरी नहीं है, मेरी है। दूसरों से दान लेकर के भी परस्पर परस्पर लड़ते हैं। एक श्रेणी के ऐसे ब्राह्मण भी हैं और दूसरे परम शांत ब्राह्मण भी हैं। ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण तो वैसे, और जिनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो ठीकरों के लिए लड़ते हैं। वो दोनों लड़ने लगे। जब निर्णय कुछ नहीं हुआ, अभी किसी को आने मत दो। जब निर्णय नहीं हुआ तो दोनों महाराज के पास में आए और बोले, महाराज ये गैया मेरी है। वो कहते गैया मेरी है, पर जैसे आपने कल दान दिया था ना मुझे, तो हाँ तो दिया था। तो कहते कि आज अभी आपने हमको दान दिया ना, तो दे दिया, तो फिर ये गैया मेरी है, हमको दे दीजिए। उन्होंने गलती से ऐसा काम हो गया, आप इस गाय के बदले दूसरी गाय ले लीजिए। उस ब्राह्मण से कहा, इस ब्राह्मण से कोई भी राजी नहीं हुआ। अंत में बोले, अच्छा इसके बदले 10 गैया ले ले, 100 गैया ले ले, 1,00,000 ले ले, 1,00,00,000 ले ले, किंतु दोनों में से कोई एक भी टसमस नहीं हुआ, दोनों राजी नहीं हुए। अब ये कोई समाधान ढूंढ ना सके। अब यो दोनों कहते, ये तुम हमारी गैया देगा कि नहीं? वो कहते, तुम गैया देगा कि नहीं? अब वो क्या करे, किसको दे किसको ना दे? वो दोनों बिगड़ करके अभी संपात इनको दिया। अच्छा तू देगा? नहीं, मेरी गैया देगा। कभी देता है, कभी हाँ करता है, कभी ना। इसे तू गिरगिट का जन्म ले और करोड़ों वर्षों तक गिरगिट के जन्म में रहे। बतलाओ, इन्होंने दान किया था, कोई बुरा काम तो नहीं किया, किंतु ऐसे ही हो जाता है। किसी ने अस्पताल किया,
और उसमें डकैत आकर के उनकी चिकित्सा हुई और चिकित्सा होने के बाद फिर वो ठीक हो गया, फिर डकैती डाला। इसका किसके ऊपर में भाव पड़ेगा, पाप किसके ऊपर में पड़ेगा, ये सब समाज के आदमी विचार नहीं। दान उन्हीं को देना चाहिए जो कि योग्य पात्र हो। यदि योग्य पात्र नहीं है तो उनको दान देने से क्या होगा, नरक में भी जाना पड़ सकता जैसे इनकी दुर्गति हुई। किंतु उन्होंने एक अच्छा काम किया था। उस गाय का तो दान तो ही अच्छा है, किंतु ये भी पुण्य है, परमार्थिक नहीं है। उन्होंने क्या किया था, कुछ बावरी बनाई, ये भी पुण्य का काम। एक ब्राह्मण उनके पास में, महाराज आप कृपा करके हमको एक भागवत की पोथी दान कर दीजिए। उसमें पोथियां लिखी जाती थी हाथ से, उसमें छपने का ये सब नहीं था, तो उसमें में उन्होंने एक भागवत की पुस्तक लिखा करके उस ब्राह्मण को दे दिया और उन्होंने अब उसको वर दिया, तुम्हारा कल्याण हो। यही एक कारण था, ये भागवत भक्ति का कार्य। इसलिए एक इस सुकृति के कारण भगवान को उनके पास में आना पड़ा और अपने चरणों को देकर के बिना मांगे ही भगवान के पास में पहुंचे और उनका उद्धार कर दिया, कुएं से स्पर्श किया और वो दिव्य देवता बन करके और फिर उनकी परिक्रमा करके चला गया। कृष्ण ने इसी बहाने उन बच्चों को शिक्षा दी, देखो ब्राह्मण साधु संतों का एक पैसा भी कभी हरण करने की चेष्टा मत करना, नहीं तो तुम्हारा लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। छत्रियों से तो लड़ते हो, उनसे लेते हो जबरदस्ती, ये सब तो होता है, किंतु ब्राह्मण वैष्णवों से, साधुओं से, संतों से डरना, उनको देना, जबरदस्ती मत करना उन लोगों के साथ में। एक पैसा भी यदि थोड़ी सी कोई भी चीज उनकी जबरदस्ती दिया और उनके आंख से आंसू निकले तो तुम्हारा लोक परलोक सदा के लिए बिगड़ जाएगा। आप लोग भी इस तरह से बच्चों को करें, तुम लोग इस चीज को सीखना। ऐसी ऐसी शिक्षा दिया, ये हम लोग भी इसको सीखेंगे। ब्राह्मणों का जो वैसे शुद्ध है, वैसे जो झगड़ालू ब्राह्मण थे उनके अभिशाप से तो ऐसा हुआ, और यदि सचमुच में सत्यवादी और भगवत भक्त हो तो कहना क्या, वो रहते ना हम लोग रहते तो हम लोग अभिशाप नहीं देते, कहते भैया ये भैया उनको दे। किंतु देखो वो लड़ रहे थे, इसलिए यथार्थ ब्राह्मण वो नहीं है। ब्राह्मण यथार्थ ब्राह्मण में न तो वो दान लेता है, न देता है, न भक्त, वो तो भगवान के प्रेम से सेवा करता है। ऐसे संतों का मिलना बहुत कठिन है, वो किसी का दान नहीं देते, वो सर्वस्व पृथ्वी के वस्तु के लिए कहते हैं ईशावश्यमिदं सर्वं जगत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजिता मार्गभाष। वो कहते हैं कि ये सब तो सब प्रभु की चीज है, ना तो कुछ को देते हैं बल्कि उसे सब विश्व का समझ करके अपने लिए नहीं करते। इसके अंदर में भी सुदामा के विप्र के इतिहास में यही लीला में यही शिक्षा है। शिक्षा यह जल्दी के मारे ये बच्चा नहीं बोल सका, किंतु उसके अंदर में शिक्षा पड़ी है। ये सुदामा जी की जो पत्नी थी वो कौन थी, गर्गरी सी जो थे ना उनकी कन्या थी गार्गी। साधारण महिला नहीं है, बड़ी विदुषी महिला है, बड़ी विद्वान महिला, परम भगवत भक्त है। भला वो अपने पति से ये कहेगी, जैसे हम लोग भिखारी हैं, दरिद्र हैं, कृष्ण से कुछ मांग लाओ, ये बात नहीं। उसके पति अकिंचन थे, अकिंचन वैष्णव। अकिंचन किसको कहते हैं? दरिद्र में और अकिंचन में अंतर होता है। अकिंचन उसको कहते हैं विश्व ब्रह्मांड की समस्त संपत्ति रहते हुए भी कुछ नहीं चाहते हैं, कोई आसक्ति नहीं रहती, सबको कृष्ण का मान करके और कृष्ण की सेवा करते हैं, इसको कहते हैं अकिंचन या निष्किंचन। और दरिद्र वह है जिसको कुछ है नहीं और बिलबिलाता है एक पैसे के लिए, दांत निकोड़ करके दूसरे से मांगता है, इसको कहते हैं दरिद्र। दरिद्र कौन है? हमारी गवर्नमेंट दरिद्र है। क्या क्यों दरिद्र है? ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जिससे अपना हाथ नहीं पसार। आप लोगों के सब रुपयों को किसी न किसी बहाने बैंक के माध्यम से इधर उधर से सबको हड़प लेती है और सरकार बनी हुई है। तो ये लोग दरिद्र है। दुर्योधन दरिद्र है, दुशासन दरिद्र है, हिरण्यकश्यप रावण इत्यादि दरिद्र है, उनका पेट नहीं भरता। डालमिया को अभी कुछ दिन पहले जेल में डाल दिया गया। क्यों? सीमेंट के लिए क्या क्या नहीं देने, वो क्या कर रहा था।